الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاصول مولا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے نیک عمل کرنے والوں پر نعمت پوری کر دی اور اس میں ہر چیز کی وضاحت اور رہنمائی اور رحمت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں. مدن ناظرین کرام, قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ بات ملتی ہے کہ جہاں قرآن کریم کا ذکر فرمایا گیا ہے, اسی طرح ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عطا جو ان پر اللہ کریم نے فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا, اور یہ حصے متعدد جگہ ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں پر کلام ذاتی کا نزول یہ ایسا وصف ہے اور ایسی عطا ہے جو عمومی نہیں ہے, انتہائی خصوصی ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موضوع پر جب تحریر فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیادی طور پر تین خصوصیات عطا کی جاتی ہیں, جس میں پہلا حصہ یا وصف پاکیزگی, نفاست, طہارت اور اس درجے کی کہ اس کیفیت اور حال جو ہے یہ ملائکہ سے بلند ہوتا ہے, اور یہی نفاست, طہارت اور پاکیزگی کلام ذاتی کو حاصل کرنے کا سبب اور اسے سمجھنے کی توفیق کا سبب بنتی ہے. اب کلام ذاتی کا نزول پرا الورا انداز سے ہے کہ جسے اور کوئی نہ دیکھ پا رہا ہے نہ سن رہا ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب پر اس کا اگر نزول ہو رہا ہے, وہ ہستیاں اسے سمجھ بھی رہی ہیں, اپنے انداز سے سن بھی رہی ہیں, اور اپنے انداز سے اس کی کیفیات جو ہیں انہیں حاصل بھی کر رہے ہیں. پھر دوسری خصوصیت جو ہے کہ کلام ذاتی کا حصول انتہائی پہلو وہ جس سے کسی اور کو سمجھ یا آشنائی نہ پہنچ سکے, لیکن جسے ورا الورا کہ کوئی باریک سے باریک شے سے بھی اگر کہیں تو اس سے بھی باریک ہے, لیکن اسے مخلوق تک اعلانیہ طور پر پہنچانا, مخلوق تک وہ حق پہنچانا, چونکہ خالق کا کلام ہے, مخلوق کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے, احکامات دین مخلوق کے لیے ہیں. یہ دوسری خصوصیت کہ وہ حصہ کہ حاصل کرنے کی استطاعت. پھر جسے حاصل کیا اس درجے کا وصف کہ کلی طور پر منو ان کمی بیشی کے بغیر, اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہوتی ہے. ہم باتیں سنتے ہیں, ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں. لیکن اس درجے کی پاکیزگی اور نفاست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلوب میں ہوتی ہے کہ بعین ہی جو عطا فرمایا گیا اسے مخلوق تک پہنچا دی. اب وہ حصہ جب مخلوق تک پہنچتا ہے تو جو تیسری خصوصیت بنیادی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کرتے ہیں یا اس پر جو شرح کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب کوئی دے سکے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لا جواب ہے, جواب نہیں اس کے پاس, لیکن وہ مانتا نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت कि जिस हिस्से की और जिस हक की वो इतला इरशाद फरमा रहे हैं, मानने वाला न सिर्फ लाजवाब होता है बल्कि न्याखाने दिल से मानता है और इस दर्जे का मानता है कि उस हक को अपना लेता है। यही सबब है कि दुनिया में जब इस्लाम फैला तो जहां तक इस्लाम की रोशनी और नूर पहुंचा वहां की मखलूक बासियत मुसलमान मजीद हक फैलाने का सबब बनती चली गई। वगरना आज भी अगर हम देखें तारीख इंसानी को, हम देखें कि फातह और मुफ्तू ये हालात तारीख इंसानी के साथ चलते आते हैं, आज भी हैं। अल्फाज कुछ कहे जा सकते हैं, लिबादे ओढ़े जा सकते हैं, लेकिन बारीकी अगर देखी जाए तो कोई फातह है, कोई मगलूब है, कोई गालिब है, कोई मगलूब है, हक है ना हक है, ये अलग गुफ्तगू है। लेकिन जहां जो मगलूब है वो मार खा रहा है लेकिन गालिब का हिस्सा नहीं बनता। दीन ने इस्लाम जहां तक पहुंचा वहां ये दुनिया के हिस्सों में जो गालिब और मगलूब होना है या फातह और शिकस्त खुर्दा होना, इन मानों में नहीं आता। चूंकि जुल्म रोकता है, अदल और इंसाफ मुहैया फरमाता है दीन इस्लाम, इसलिए जहां तक पहुंचा वहां मखलूक इस हक से जब रूशनास हुई, और ये कैफियत जो अंबिया अलैहिस्सलाम की खुसूसी एक हिस्सा है, एक अता है कि वो जब इरशाद फरमाते हैं हक को तो जो जिसे हक नसीब होता है मान मफाहीम उसके न्या खाने दिल में उतरना शुरू हो जाता। वहां ऐसा नहीं है कि हक के मुकाबल अल्फाज कमजोर हुए तो वो खामोश हुआ, हक का मानना उस दर्जे पर पहुंचा देता है कि बंदा पूरे खलूस के साथ उस हक के साथ जुड़ जाता है, उस हक पर अमल पैरा होना शुरू हो जाता है। अब ये हिस्से रुकते नहीं है, हमारी बहस हो सकती है, मखसूस जगह पर रद्द हो सकता है, लेकिन बिलअमूम इन खसूसियात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए उम्मत जो होती है उसे जो कुछ नसीब होता है वो बतौर तवारस नसीब होता है, विरासत में नसीब होता है। अब आज जो कुछ भी है उसका सही और गलत इसका पैमाना कुरान और सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस है। अब इन हदूद के अंदर इन तीनों खसूसियात में से किसी खसूसियत का कोई जर्रा अगर कहीं है तो बतौर तवारस है, उसमें जाती कमाल किसी का नहीं, क्योंकि बहस रहती है मुशाहदात पर, कशफ पर, और कशफ और मुशाहदे को ऐसा भी देखने में आया है कि इसे जरिए माश भी बनाया गया। अब जहां इस कैफियत को, इस हाल को जरिए माश बनाया गया वहां इसका होना या इसके होने की दलील क्या हो सकती है? इसलिए कि ये जो कशफ और इलामी कैफियत है ये जिसे अता की जा रही है उसके लिए और उसके समझने का, दुरुस्त या गलत होने का जो पैमाना है वो कुरान और सुन्नत है। फिर जो महसूस कर रहा है या जिसने कुछ देखा वो उसकी जात के लिए है, वो मखलूक को हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि मखलूक का हुक्म मुकम्मल हो चुका है जब इरशाद फरमा दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का और खातमुन नबीयीन का और आपकी जात रहमतुल आलमीन इमामुल अंबिया। इस राह का मुसाफिर उम्मती है, उसका दर्जा मानने का है, उसका दर्जा हुक्म देने का नहीं है। तो मौजूद सामीन करम, तो यहां जब बात की जाती है तौरात या इंजील की तो उससे भी मुराद यही है कि वो हक जो अल्लाह करीम ने मखलूक को अता फरमाया, करम और एहसान फरमाया कि वो अपने मकसद तखलीक को पहुंच सके। और जब हक नसीब होता है, देखिए ना यहां फरमाया गया सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अल्लज़ी अहसना व तफसील लिकुल्ल शय, के फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी जिससे नेक अमल करने वालों पर नेमत पूरी कर दी। यानी ये वो रहनुमाई है जिससे अमले सहले की तरगीब भी मिलती है, रहनुमाई भी मिलती है, और जब अमल दुरुस्त हो, रास्ता साले और दुरुस्त हो, मंजिल आसान भी होती है और मुसाफर बा मंजिल भी होता है। मंजिल का आसान होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुसाफर का बा मंजिल होना मकसद को पा लेता है, तकमील मकसद मंजिल को पा लेना है। उस राह का आसान होना यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस राह का मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा देना एक कामयाबी है। और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने मूसा अलैहि सलाम को जो किताब अता फरमाई जिससे नेक अमल करने वालों पर नेमत पूरी कर दी, नेकी भी है, तरगीब भी है, और वो नेमत है जो मकसद है आयात का उसे पूरा फरमाती है। व तफसील लिकुल शयइन, और इसमें हर चीज की वजाहत, व हुदन, और हुदा जब फरमाया और रहनुमाई, हुदा रास्ता, लेकिन वो रास्ता जो सीधा हो, जो मंजिल पर पहुंचाने वाला हो, ऐन सीधा रास्ता जो मंजिल तक पहुंचाए। चूंकि हुदा रास्ता, तो जब फरमाया ना वह हुदम व रहमत अल्लाहुम बिलिका रब्बिहिम युमिनून, रहनुमाई भी है व रहमत, और रहमत है। किसे नसीब हो रही है? नेक अमल करने वाले। बुनियादी तौर पर जरूरत है नियत की। किस राह का इंतखाब करता है कोई? हम समझते हैं कि जो कुछ दुनिया या हालात हैं हमने जोरे बाजू से हासिल करने, या जोरे बाजू से कोई छीन कर ले गया, निजामे हयात है, उसकी अपनी तकसीम है, उसकी तकसीम से ताकतवर कौन है जो उसकी तकसीम पर हावी हो जाए? ये मुमकिन नहीं। नासमझी है, गलतफहमी है, कम इल्मी है, जहालत है, कुछ कह लो, ये दुरुस्त बात नहीं है। फिर जब हक पर और नेकी पर चलने वालों की जो नेमत उन्हें नसीब होती है, तो फिर उस नेमत से क्या है कि उसमें हर चीज की वजाहत है। हर चीज की वजाहत यानी दुनिया की जिंदगी है, मामलात हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, और कितने हिस्से गैर मरी हैं। अब किसी के एहसास हैं, किसी की ख्वाहिशात हैं, किसी की चाहते हैं, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? लेकिन जहां कोई सवाल है, ये हक उसका जवाब इरशाद फरमाता है, रहनुमाई फरमाता। अब उस रहनुमाई के लिए जरूरत है कि रहनुमा का हुक्म माना जाए, और रहनुमा अल्लाह करीम ने दारे दुनिया में अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए, जिन्हें वो मर्तबा अता फरमाया कि कलाम जाती न सिर्फ हासिल करने की इस्तात नसीब फरमाई, बल्कि उस हक को मखलूक तक बयाने ही मुंतकिल फरमाना जाए, ये भी वस्फ अता फरमा। और न सिर्फ वो मुंतकिल होता है, उसकी कैफियत और हाल जो है वो नया खाने दिल तक उतर जाता है। सुम्मा तलील जुलूदुहुम व कुलूबुहुम मिला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह करीम की याद खाल से नया खाने दिल तक हर शय में इस तरह के वजूद का हिस्सा हो गई। ये अजमत है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, कैसे माईयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो खैरुल कुरून पर बात की जाती है, पूरी फिक्र की बुनियाद कुरून सुलह पर रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है? इसलिए रखी जाती है कि ये वो हस्तियां हैं जिन्हें जमाना नसीब हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो कुर्ब उस दर्जे के ईमान को पहुंचा गया कि फिर गैर सहाबा से उस दर्जे का ईमान हो नहीं सकता। और न सिर्फ जात, बल्कि इतनी कुव्वत बख्शी मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तीन दर्जों तक ताबीन और तबा ताबीन तक यही सूरत चली थी। इसीलिए जब सूफिया के मौजू पर बात आती है, और अगर आप गौर फरमाएं तो करून सुलह में शोबा जात पर भी काम मिलता है और एक हस्ती से कई शोबों पर भी जो है वो दस्तरस जो है वो मिलती है देखने में, तारीख में, हकीकत में। लेकिन जब बहस किसी पर की जाती है, इल्मी शोबे की बात हो या बात इसकी खफी शोबे की हो, सूफिया की हो, खैरुल कुरून के बाद बात की जाती है, उससे पहले नहीं की जा सकती। वो दर्जे, वो हस्तियां, वो बुलंदियां हमारी दस्तरस से बाहर है। ये अल्लाह का करम और एहसान, ये सितारे हमें निशान मंजिल के तौर पर अल्लाह करीम ने अता फरमाए। हमारा हिस्सा उनसे राह का देखना और रहनुमाई हासिल करने का तो है, हमारी हैसियत जांचने की नहीं है, बहस की नहीं है, तोलने की नहीं है। जब हम अपने आप को देखेंगे तो फिर समझ आएगी कि तोल तो उसका किया जा सकता है जिस पर अबूर हो, और जिस पर अबूर न हो उसका तोल करना किन मानों में आए। गलतफहमी हो सकती है, कम अकली हो सकती है, बेवकूफी हो सकती है, पागलपन हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। फिर ये वो हस्तियां हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस से तालीम नसीब हुई, तरबियत नसीब, कैफियात नसीब हुई, तो फिर वो लिसाने नबूवत के दर्जों पर फायज हुई। इसीलिए आज भी जब कोई बहस करता है खैरुल कुरून पर, और खसूसी तौर पर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की हस्तियों पर, तो उसका मकसद उनकी जात नहीं होती, उसका मकसद दीन में एतराज पैदा करना होता है। और दीन में तब तक एतराज पैदा हो नहीं सकता जब तक इस ढाल जो अल्लाह करीम ने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अता फरमाई, इस पर ज़रब न लगाई जाए। और सदियां गुजर गई हैं जरब लगाने वालों को, और ये वक्त गुजर जाएगा, हक को ना हक नहीं कोई साबित कर सकता, क्योंकि इसे हिफाजत इलाहिया नसीब। अब बात जब मैं कर रहा था कि खैरुल कुरून के बाद सूफिया पर भी जब बहस आती है, औलिया अल्लाह पर भी जब गुफ्तगू आती है, उस्ताद और शगिर्द की बात आती है, मनाजिल की बात आती है, मनासिब की बात आती है, तो खैरुल कुरून का जो मुबारक तीसरा जमाना है, उससे बाद लेकर आज तक की बात आएगी। हमसे बाद जब कोई बात करेगा तो वो अपने वक्त तक, लेकिन इब्तिदा वो भी खैरुल कुरून से करेगा, क्योंकि खैरुल कुरून में जब कोई दाखिल हो जाता है तो वहां पैमाने फिर कोई नहीं, अल्लाह करीम की अता है उन हस्तियों पर। और वही असूल जो कुरान और सुन्नत का है, उससे बाहर आपको कोई चीज नहीं मिलती। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह करीम के नजदीक हक जो है वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम क्या है? कलाम ए ज़ाती की हदूद कयूद क्या है? इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हिस्से जो आपने इख्तियार फरमाए, वो हिस्से जिनकी आपने तरगीब इरशाद फरमाई, वो हिस्से जिनसे आपने इनकार फरमाया, वो हिस्से जिनको आपने नापसंद फरमाया, हदूद व कयूद का तयन कर दिया। इसीलिए तो कुरान करीम फरमाते हैं ना कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेहतरीन नमूना, बेशक यकीनन मुस्तकम बात फरमाई। इसलिए कि ये हदूद व कयूद हैं जो कायम रखेंगी अल्लाह की राह पर, जिस मकसद को पैदा किया गया है उस मकसद के हासिल होने का ये बुनियाद है, ये सबब है। और जहां दुनिया की बात कुरान करीम में की गई, इरशाद फरमाएगा आप पढ़ें, मुताला करें, आखरत का हिस्सा बयान करना। जब बात अकायद की आएगी तो बुनियाद तौहीद है, लेकिन जब आप ईमानियात में आते होंगे तो आखरत का मानना बुनियादी हिस्सों में अता फरमाएंगे। क्यों? ये ठहरी हुई दुनिया नहीं है भाई, ये आलम हिल रहा है, चल रहा है, हरकत में है, हर शय गर्दिश में है, हर लम्हा जो गुजर रहा है वो नहीं पलट रहा, आने वाला लम्हा नया लम्हा है। हर वजूद जो सांस ले रहा है अपने हिस्से की सांस पूरी कर रहा है, उसका असर उसका वजूद दिखा रहा है, उसके वजूद की ताकतें बतला रही हैं, उसकी सोच और समझ बतला रही है। कुरान करीम बयान फरमाता है ना कि वापस लौटा दिया जाता है इंसान, यानी ज़ईफ़ी वो है कि कुछ जानता नहीं है, उंगलियां पकड़कर चल रहा है, सहारे ले रहा है, पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, वो क्या है, मैं किसे देख रहा हूं, खाने को अच्छा क्या है, पहनने को अच्छा क्या। एक वक्त आता है बता रहा होता है, तरबियत कर रहा होता है, रहनुमाई कर रहा, और फिर वक्त ऐसा वर्क पलटता है जिंदगी का कि फिर पूछ रहा होता है ये क्या है, मुझे क्यों दे रहे हो, मैं क्यों बैठूं, मैं कहां जाऊं, कुछ सहारा दो तो मैं बैठा उठूं। तो जिंदगी की जो औराक है, हर वर्क का उलटना पलटना, अपना वक्त का पूरा होना, अपने लम्हे का पूरा होना, हर सांस की तकमील होना, वजूद तक शहादत दे रहा होता है कि मियां जो लम्हा गुजर गया वो गुजर गया। अब यहां जो बात बहुत नजाकत की है मुअज्जज सामईन कराम, ऐसे जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, ऐसे ही मामला मलकुल मौत के सामने हमारी पेशी का आ जाएगा कि हमारा वक्त पूरा होगा और रूबरू होना मलकुल मौत का और जिस पर मौत वारिद हो रही है उसका, क्या कलाम हो रहा होगा, वक्त पूरा होगा, मुसाफिर है, यहां के सफर की तकमील हुई, बरज़ख मुंतकिल होना, उस लम्हे होश से लेकर उस लम्हे तक के आमाल आंखों के सामने आएंगे, कमी बेशी सामने आएगी, लेकिन क्या फुर्सत होगी कि उस कमजोरी को बेहतरी के साथ तब्दील किया जा सके। वो वक्त जो गुजर गया, उस वक्त का कोई नेमुल बदल वहां किया जा सकेगा कि कोई ऐसा नेमल बदल हो जाए कि वो जो वक्त जाया मैंने किया उस वो जाया ना हो और उसका कोई हासिल हो जाए? नहीं। ये जो अल्लाह करीम की याद और कसरत से याद, अबंडस रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला, ये होश में रखती है, हर लम्हे इंसानी कलब पर ऐसी दस्तक रहती है कि वहां गफलत नहीं वारद होती, और जहां गफलत नहीं होगी तो फिर वहां होश होगा, और होश हक के सिवा फिर है कोई नहीं, क्योंकि जहां अगर हक नहीं है तो वहां फिर होश नहीं है। तो फिर नजाकत जो है वो बंदा एहसास करेगा अपने गुजरते लम्हों की, सांसों की, हरकतों सकनात की, देखने सुनने, कदम उठाने, कलाम करने, एक एक चीज को देखेगा कि मैं किस लवश को इख्तियार की हूं और मैं कहां जा रहा हूं। तो मुअज्जज सामईन कराम, सीधा रास्ता और ऐसा सीधा रास्ता और ऐसा हक जिसमें हर चीज की वजाहत है, रहनुमाई बहुदा और रहनुमाई वरहमा और रहमत है, अल्लाह करीम की रहमत, उसकी रजा का सबब है, और जहां रहमत का इनकता देखा गया है, कुरान करीम जो सबका अकवाम के वाक्यात बयान फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक के जो हालात कुरान करीम बयान फरमाता है, अफराद से कौमों तक के हालात बयान है कुरान करीम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में भी इनफरादी इरशाद भी फरमाया गया जवाब किसी की बात का, और इज्तमाई तौर पर अकवाम साबका में फर्द पर भी बात इरशाद फरमाई गई और कौमों पर भी बात इरशाद फरमाई गई। जहां रहमत की दूरी की बात आती है वहां फिर हदायत सल्ब की जाती हो जाती, अल्लाह करीम की रहमत का मुनकते होना हदायत के सलब हो जाने का माना है, इसका माना हदायत फिर नसीब नहीं। और ये हक ऐसा है कि रहनुमाई देता है, حقیقی راہ دکھاتا ہے اور اللہ کی رحمت. اب جب اللہ کی رحمت پر ہم بات کریں گے اور رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے, اور وہ لوگ جنہیں یہ حصے نصیب ہوئے کہ وہ عمل صالح اختیار کریں گے, تو پھر دو پہلو بڑے واضح نظر آتے ہیں. ایک, اللہ کریم کی رحمت, اس نے زندگی کو سہولت اور آسانی دی اور وہ روش نصیب ہوئی جو آسان اور سہل ہے. ضرورت بھی ہے اور تکمیل ضرورت جو ہے وہ آسان اور سہل ہے. پھر دوسرا پہلو کہ اس کے ساتھ برکت ہوگی, رحمت ہوگی اللہ کی, کہ جو نتائج ہیں وہ مثبت بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک ایسی تقویت ہوگی جو ظاہر, نہ صرف ظاہر, باطن تک اطمینان دے گی. کتنے لوگ آتے ہیں جو بات یہ کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ ہے سب کچھ, سکھ نہیں ہے. وہ جو سب کچھ ہے پھر وہ کائے کائے بھائی جہاں سکھ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سکھ ہے, تو وہ کچھ نہ ہونا اس کا کیا بگاڑ رہا ہے. تو بنیادی طور پر جب انسان مطمئن ہوتا ہے تو وہ کیفیت اور حال ایسے ہے جو حقیقی طور پر امیری ہے. وہ حصہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, چونکہ اطمینان سوائے حق کے اور کہیں ہے نہیں. اور جہاں حق نصیب ہو گیا پھر اور چیز کسی کی کمی کیا رہے گی. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں جب اپنی استعداد سے, اپنی خواہشات سے, اپنی ضروریات سے, تو اس کے زیر و بم اور ہوتے ہیں. لیکن جب اسے حق کی نگاہ سے دیکھا جائے, ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت دیکھا جائے, اللہ جل شانہ کے کلام کے مطابق دیکھا جائے, تو پھر یہ دنیا اور نظر آتی ہے. یہی صبح و شام ہے, یہی صحت و بیماری, کمی بیشی زندگی کی یہی رہتی ہے, لیکن حالت بدل جاتی ہے. جو دنیا کا ہو کر دیکھا جائے وہ نظر اور ہے, جو حقیقت سے آشنائی نصیب ہو تو پھر نظر اٹھے تو دیکھنا اور ہو جاتا ہے. چونکہ پھر ہر جگہ ہر لحظے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور اس کے مقابل جب ذات پر بات آتی ہے تو مقصود ذاتی خواہشات ہوتی ہیں, ان کی تکمیل ہوتی ہے. بڑا فاصلہ ہے بھائی, حق اور باطل میں بڑا فاصلہ ہے. تو رحمت کیا ہے؟ لعلہم بلقائے ربہم یؤمنون, تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملنے پر ایمان لائیں. قرآن کریم بے شمار دفعہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے, قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے, جو کہتے ہو اس پر فیصلہ کیا جائے گا, غلط اور صحیح جو ہے اس پر انصاف ہوگا, ہر چیز واضح ہوگی. جو ماں بہن بحث کرتے ہو اس میں فیصلہ ہوگا, اور جو تجاوز کر کے بھول گئے ہو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو جو کیفیت اس کے حضور حاضر ہونے کی ہے, اب بات مستقبل کی ہے, لیکن اس مستقبل کا حصہ روز معاشر کا قائم ہونا, حساب کتاب کا ہونا, یعنی اللہ جل شانہ کی عدالت میں پیش ہونا, اس کے حضور رو برو ہونا, اس حال میں کہ جان صاف ہو رہا ہے, اس دن جسے منتخب فرمایا میرے اللہ نے, قیامت کا بپا ہونا, وہ یقین جس درجے کا ہے اس درجے کی کیفیت معاملات میں نظر آئے گی. جہاں زیادتی اور تجاوز ہوگا قدم رک جائے گا, زیادتی ہو گئی تڑپ ہوگی, تکلیف ہوگی, کیسے اپنے اللہ کے روبرو حاضر ہوں, کیا جواب دے سکتا ہوں اس کی مخلوق سے زیادتی کی. جو تفویض قوت مجھے عطا فرمائے گی اس کا غلط استعمال کیا, پھر ہر کوئی لڑکھڑائے گا, گھبرائے گا. گزشتہ روز سوال کیا گیا, میڈیا کے پروگرام میں میرے ساتھ جو شریک تھے دوسرے مہمان ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو چھوڑ دو، کلام ذاتی کو چھوڑ دو، بدر و عہد کی بات نہ کرو، صحابہ کے حصے نہ بتاؤ، لیکن مجھے حالات کا حل بتاؤ۔ تو یہ کیفیت جب ہمارے معاشرے میں ہوگی تو پھر یہ کچھ ہوگا نا جو ہو رہا ہے۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے، کیا روش تھی لوگوں کی، کیا کھاتے نہیں تھے، پہنتے نہیں تھے، طاقتور اور کمزور طبقات کی تقسیم نہیں تھی، سب کچھ تھا لیکن انتہائی ظلم تھا، اولاد قتل کی جاتی تھی، باپ کی خواتین بیٹوں میں وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، طاقت قانون تھا، انا ہر ایک کے اندر کی حکمران تھی، قتل و غارت پر فخر کیا جاتا تھا، نظمیں لکھی جاتی تھیں، شاعری کی جاتی تھی قتل و غارت پر اور اپنی انا پر، اپنے اجداد کی تعریفیں کی جاتی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو حق عطا فرمایا، ایک ٹھہراؤ انسانیت کو نصیب ہوا اس حق سے۔ ہم امتی ہیں، بحثیت امتی جب سوال اور جواب اس درجے کو پہنچ جائے کہ یہ حق ہٹا کر جواب دو تو پھر سوال سوال نہ رہے گا، جواب تو کجا کہ وہ اس کی کوئی حیثیت رہے۔ بات سوال اور جواب اور بحث کرنے والے کی ذات تک آ جائے گی، چونکہ وہاں کا انکار کلام ذاتی کا انکار ہے، کلام ذاتی کا انکار اللہ جل شانہ کے مقابل آنے کی بات ہے۔ کس روش کو ہم جا رہے ہیں بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو وقت میرے پاس ہے شاید یہ ہمیشہ رہے گا، تو تھوڑا وقت پہلے دیکھ لو ہم کہاں تھے، ہم تو تھے ہی نہیں، تو رات میں اور دن کے آغاز اور اختتام تبدیلی ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے لوگ جا رہے تھے، آج میں اور آپ اگر ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم ہونا ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا ہونا زیرو بم پیدا کر دے گا کائنات میں، کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ ہاں ایک بات ہوگی، میری اور آپ کی نیت پیمانے پر آ جائے گی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک رکھتے ہوئے اس کے حضور ہما وقت معافی کا طالب ہونا چاہیے، منصفی نہیں مانگنی، رحمت مانگنی، ہر شے اس کی دی ہوئی ہے، اور جہاں جو ہم استعمال کر رہے ہیں بات ہر شے کے حساب پر آ جائے، کوئی حساب نہیں دے سکتا، بخش صرف اس کی رحمت سے ہے۔ اس روش کو تو اختیار کرنے کی کوشش کریں جس سے اس نے پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ ذات جن کی اقتداء، جن کے حکم پر چلنا رب العالمین کو محبوب کرا دیتا ہے، اس چلنے والے کا کی ذات کو اللہ اس سے پیار فرماتے ہیں، وہ ذات مجھ خطا کار کے لیے، مجھ گناہ گار کے لیے آپ اس دار دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تکالیف اٹھائیں، سردی گرمی برداشت کی، بھوک پیاس سے آپ گزرے، مخلوق آگ پر ٹوٹ پڑی، ہر طرف سے آگ برسانے کی کوشش کی، کیوں؟ کیا آپ مجھے حق درمائی دینے کے لیے، عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے؟ کیا قرآن کریم مجھے نہیں مخاطب فرما رہا؟ کیا حدیث مبارکہ مجھے مخاطب نہیں فرما رہے؟ کیا اسوہ حسنہ میری رہنمائی نہیں؟ تو ان باریکیوں کو دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو میں میری ذات ہے، ہم کیا حیثیت کیا؟ او بڑی بڑی بادشاہیاں اور بڑی بڑی طاقت और फौजियों और लाओ लश्कर, क्या खुदाई का दावा, एक लंगड़ा मच्छर, माजूर मच्छर खुदाई के दावों को निश्चो नाबूद करेगा। हमारी हैसियत क्या? अल्लाह करीम की रहमत है कि ये हकायक सामने रहें, जहां जिसके पास जितना अख्तियार है उसे देखो उसके मसारिफ क्या है, कहां सर्व कर रहे हो, क्योंकि जिसकी ताकत दी हुई है उसके हजूर हाजिर होना है और इस वदियत हिस्सों के हिसाब देने हैं, जवाब देना है। मैं कल मुताला कर रहा था या किसी का वाक्या सुना, मुझे याद नहीं, लेकिन एक लहजे को मेरा शरीर कांपा कि जब मैं किसी की बात सुन रहा हूं या किसी को मैंने पढ़ा है और उसकी गुफ्तगू कलाम जाती पर है, तो पहला हिस्सा तो उसके कलाम की कमी बेशी का उसे खुद जवाब देना होगा, दूसरा जो इस्तफादा कर रहा है और अगर हक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना हक है तो जो वो भटक रहा है उस मखलूक का हिसाब देना होगा। यकीन माने मेरे सामने ये मिंबर रसूल आ गया और मेरे सामने कुरान करीम और इस पर जो गुजारशात मैं आपको पेश कर रहा हूं ये उस वक्त मेरे सामने आ गए कि कितना नाजुक मामला है। पहला तो जवाब मुझे देना पड़ेगा कि इस हक में जो अमेजश मैंने कर दी, को गलती की, कोताही की, ज्यादती की, कमी बेशी की, दूसरा जो मखलूक को गलत राह मैंने दिखाई, बड़ा मुश्किल है भाई, अल्लाह माफ फरमा। तो फिर क्या यहां का बयान करना माज यही एक जगह है जिसका हिसाब होगा? हर एक अपने हिस्से का जवाब देगा, जिसे ये मौका नसीब है तो यहां से कलाम कर रहा है उसे दरकार है कि हक गोई करे, तजावज ना करे। जो समात कर रहा है उसे अपनी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ ना ले जाए, अपनी ख्वाहिशात अपनी चाहतों को उन हदूद के अंदर ले जाए जो हक बयान फरमाया जा रहा है। वो लोग अपने परवरदगार से मिलने पर ईमान लाएं, तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हम सब ने उसके हजूर जा पेश होना है, हिसाब किताब होगा, जवाब दही होगा, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह गलतियां कमजोरियां और गुनाह माफ फरमाए। इस काबिल नहीं है कि हमारी किताब खुले, न अपने आप को इस काबल समझते हैं कि जो सांसें बची हैं उसमें को आला हिस्से होंगे, जैसे हम हैं ऐसे ही वो हिस्से भी होंगे, जो गुज़श्ता है आमदा की भी, अल्लाह माफ फरमाए, वो कादिर है, गफूर रहीम है, माफ फरमाए, अच्छाई की तौफीक अता फरमाए। ये शोबा बड़ा नाजुक है दीन का, हर मसले का हल है, दीन इबादात मामला, यानी दीन दुनिया, हम तकसीम करते हैं, दीन इस्लाम तकसीम नहीं फरमाता। इसलिए तो सारी जिद्दत के बाद हम हक से हटकर, और जिद्दत जो समझते हैं वो ये है कि कुरान करीम से बाहर मामलात का, निजाम हुकूमत का हल ढूंढ लें, मखलूक को आराम मुहैया कर सकें, तहफ्फुज दे सकें, हकूक दे सकें, हक के बाहर हक कहां हो, तो यही वो नजाकत है जिसे समझने की जरूरत है, हर दर्जे के हर फर्द की जरूरत है, हर एक की इनफरादी तौर पर ये समझने की जरूरत है। फिर हमारी दूसरी जो बहस होती है वो नताइज पर होती है, हम भूल जाते हैं मैं क्या कर रहा हूं, नतीजा आला चाहिए। पहले जिंदगी फिरौन की बसर हुई, मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हो, अंजाम वैसा हो, जन्नतुल फिरदौस की दुआ होती है, क्या जगह क्या था जहां मकाम महमूद हो, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हो, जहां आपके हजूर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियां हाजिर हों, कभी हमने सोचा हम किस राह पर चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मेरे लक्ष्य से, मेरे कुव्वत बाजू से नतीजा नहीं, जो मुझे हिस्सा अल्लाह ने अता फरमाया उस पर जो मैंने राह मुंतखिब की वहां तक की बात होगा वो जो अल्लाह करीम को मंजूर हो, जो वो पसंद फरमाए। क्या मैं अपने अंदर खालिश होने की नियत नहीं कर सकता? क्या मैं दीन को समझने, उस पर अमल पैरा होने और मखलूक तक पहुंचाने की नियत भी नहीं कर सकता? मैं अपने आप को क्या अल्लाह जल्ला शानहु के हवाले नहीं कर सकता? किसी को कोई शय हवाले की जाए मौजूद सामीन कराम, उसकी हिफाजत जिसके हवाले की जाती है उसकी हैसियत के मुताबिक होती है। आम सा आदमी हूं, गुनागार आदमी हूं, और मैं नहीं समझता, अल्लाह माफ फरमाए किसी कमी बेशी पर, कि कोई अमानत मेरे पास हो और मैं उसको उस दर्जे तक न संभालूं कि जहां तक मेरी कुव्वत है या मेरा हौसला है उसे मैं अपनी आबरू समझ कर संभालूं। तो मैं हूं क्या? है जो कुछ उसका। तो अगर एक बंदा, एक फर्द, एक आम इंसान जो मोहताज है, माजूर है, वो उसे अपनी आबरू समझकर संभालता है, रब्बुल आलमीन के हजूर हम अपने आप को हवाला करते हुए क्यों कतराते हैं? क्या है हमारा ईमान का दर्जा? तो मैं ये समझता हूं कि जात पर रखने के बजाय अपने आप को अल्लाह के हवाले किया जाए। गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है, उसी के दस्ते कुदरत में बख्शिश है, उसी ने हदायत अता फरमानी है, उसी की रहमत है। देखो ना, फरमाया अल्लाह बिलका रब्बे मुमिनून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इरशाद फरमाया, हम तो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह करीम कमी बेशी हम माफ फरमाए, हक को समझने की तौफीक अता फरमाए, हक को इख्तियार करना नसीब हो और इसी हक पर रहते हुए आखरत का सफर नसीब हो। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।